अभी सबसे पहले ये बात आई यहां पे कि परीक्षित को ये बोध हो गया, क्योंकि बहुत सारे ऋषि बैठे हुए हैं। आपको बताया असितो देवलो व्यास विश्वामित्र वशिष्ठ, सब ऋषि बैठे हुए हैं, लेकिन उसके चित्त में एक बोध हो गया कि किस व्यक्ति से औषधि ग्रहण करने पर व्याधि की निवृत्ति होगी। अब आपको यह विश्वास हो जाता है, इस डॉक्टर से औषधि यदि लेंगे तो बीमारी की निवृत्ति हो जाएगी, तो आप उसी डॉक्टर के पास में जाते हो, पक्की बात है ना। तो उसने अपने दिमाग में और संस्कारों से और शास्त्र की कृपा से, गुरु कृपा तो है ही, क्योंकि अज्ञात के ज्ञापक शास्त्र हैं, वो शास्त्र की कृपा, और शास्त्र की कृपा से उस व्यक्ति को इस चीज का बोध हो गया कि किस व्यक्ति के द्वारा औषधि ग्रहण करने पर बीमारी की निवृत्ति होगी। अच्छा, पहले बीमारी का भी निश्चय कर लिया, अभी डायबिटीज की बीमारी है तो डायबिटीज की दवाई लो, ब्लड प्रेशर की बीमारी है तो ब्लड प्रेशर की बीमारी की दवाई लो, तो इसको बीमारी किस चीज की है? क्या बीमारी का नाम बताया था? भव। निवृत्त तरसै उपगीयमानात् भवौ सदात्। भव की औषधि, तो भव का अर्थ किया जन्म मृत्यु, तो जन्म मृत्यु की औषधि, मैंने वो जन्म मृत्यु से छूटना चाहता है। अब जन्म मृत्यु से क्यों छूटना चाहता है? आप छूटना चाहते हो? जन्म मृत्यु से वही छूटना चाहता है जन्म लेने के बाद जिसने जन्म का प्रयोजन पूरा कर दिया, और जन्म का प्रयोजन क्या है? अपार ऐश्वर्य की प्राप्ति और ईश्वर की अनुभूति, इसका परोक्ष ज्ञान। ऐश्वर्य की तो प्राप्ति होनी चाहिए, लेकिन ईश्वर का परोक्ष ज्ञान होना चाहिए। ईश्वर का जब परोक्ष ज्ञान होगा और अपार ऐश्वर्य, क्योंकि कौन से कर्म का फल है परीक्षित के सामने, जिस राजगद्दी का, ऐसा बताते हैं युधिष्ठिर की जो राजसभा थी, जो महल था, तो आप तो अपने फ्लैट को देख के ही खुश हो जाते हो, उसका उसकी जो राज्यसभा बनाई थी वो किसने बनाई थी? मैं दानव ने बनाई थी, मालूम है आपको, भगवान ने आज्ञा दी थी उसको। कहते हैं युधिष्ठिर की सभा ऐसी थी जैसे रावण की सभा थी, इतनी इतना वैभव था। तो अपार वैभव की प्राप्ति बिना पुण्य के नहीं हो सकती, कर्मों की विचित्रता है। यदि कोई सत्कर्म आपको अपार ऐश्वर्य की प्राप्ति करा सकता है, तो कोई पाप कर्म आपको श्राप भी दिलवा देता है। कर्मों की कितनी विलक्षणता है। भीष्म पितामह ने कहा, अरे तुम्हें पता है मैं कृष्ण से कितना प्रेम करता हूं, लेकिन मेरे सामने आज ऐसी परिस्थिति खड़ी हो गई, जिस व्यक्ति से मैं इतना प्रेम करता हूं उस व्यक्ति के ऊपर मेरे को बाण चढ़ाने पड़ रहे हैं। जिस व्यक्ति को आप इतना प्रेम करते हो, जिसके सपने देखते हो और चाहते हो कि जीवन में एक बार उसकी प्राप्ति हो जाए, वो व्यक्ति जब सामने खड़ा होता है तो उस व्यक्ति को दिल से तो नमस्कार करते हैं, बाहर से नमस्कार न करके उसके ऊपर क्या चला रहे हैं, मान चला रहे। ये कर्मों की विलक्षणता है। तो कर्मों का जो फल है वो अत्यंत विलक्षण है, इसलिए शास्त्रकार कहते हैं गहना कर्मणो गति। गीता में लिखा है कर्मणो यविबोधव्यम बोधव्यम च विकर्मणः अकर्मणश्च बोधव्यम गहना कर्मणो गति। गहन किसको बोलते मालूम है आपको? कभी आपने नदी देखी होगी, उसमें ऐसे भंवराते रहते हैं, उसमें बड़े से बड़ा तैराक डूब जाता है। और जीवन में विषम कर्म करने की परिस्थिति जो उत्पन्न होती है उसका हेतु एकमात्र है आपकी संगति। चाहे भीष्म को देख लो, चाहे द्रोणाचार्य को देख लो, ये कृष्ण से अत्यंत प्रेम करते हैं लेकिन कृष्ण के विपरीत खड़े हैं। इसका कारण है दुर्योधन का साथ। इसी प्रकार से जब व्यक्ति इंद्रियों का साथ करता है तो अतिंद्रिय तत्व के विपरीत खड़ा हो जाता है। श्री कृष्ण ने गीता में सुख की व्याख्या की, आपने पढ़ा होगा, सुखम आत्यांतिकम यत्तद् बुद्धिग्राह्यम अतिंद्रियम। सुख तो अतिंद्रिय है, जो इंद्रियों से लिया जाता है वो सुख नहीं, वो तो सुख का आभास है। और हम जीवन भर जिस सुख को ग्रहण कर रहे हैं वो इंद्रियों के द्वारा ही सुख को ग्रहण कर रहे हैं, इसलिए बुढ़ापे में लूटे लूटे और पीटे पीटे से क्यों दिखाई देते हो? क्योंकि जो प्राप्त करना चाहते थे वो मिला नहीं है और सारा जीवन समाप्त हो गया, इसलिए उसने ये निश्चय कर लिया भव सदात, भव की औषधि चाहिए। तो भव का अर्थ क्या बता दिया आपको? जन्म मृत्यु। एक शंकराचार्य की एक पुस्तक है, कभी हमने यहां पे कथा की थी उसके ऊपर, प्रश्नोत्तरी, उसमें ये लिखा है, एक प्रश्न है उसमें, कोवा जाता है, वास्तविक में जन्म किसका हुआ, किसका जन्म हुआ? उत्तर मालूम है थोड़ा, यस्य न पुनर्जन्म, जन्म बुद्ध का हुआ, जन्म शंकराचार्य का हुआ। जन्म उसका है जिसका दोबारा जन्म नहीं हुआ। तुम्हारा कोई जन्म जन्म थोड़ा ही है। इस जन्म में 7 तारीख को पैदा हुई, अगले जन्म में 8 तारीख को पैदा हो जाओगे, अगले जन्म में 10 तारीख को पैदा हो जाओगे, कौन सी तिथि मनाओगे? कोवा मृतः यस्य न पुनर्मृत्यु। इस जन्म में 15 तारीख को मरे, अगले जन्म में 16 तारीख को मर जाओगे। कभी आंखें बंद करके समाधि में बैठना, अपनी पुण्य तिथि देखोगे तो 365 दिन तुम मरे हो और 365 दिन जन्मे हो। तो जन्म का प्रयोजन जब व्यक्ति समझ ले सम्यक प्रकार से, फिर जन्म से व्यक्ति मुक्त होना चाहता है। इसलिए लिखा यहां भव औषधात। लेकिन ये औषधि कौन देगा? तो उसके लिए लिख गया निवृत्त तरसई उपगीयमानात, जिसकी तृष्णाएं निवृत्त हो गई हों और उस व्यक्ति के द्वारा यदि भागवत गाई जाए तो वो औषधि जो है जन्म मृत्यु की औषधि, जन्म मृत्यु से मुक्त करने की औषधि बन जाएगी। एक बात, दूसरी बात, एक बोध उसको ये हो गया, वो व्यक्ति भी उसको सौभाग्य से, क्योंकि पंचदशी में लिखा है, आपको कई बार बताते हैं कि सत्कर्म परिपाकास्ते करुणा निदिनो उद्धृता। जीवन में कभी कोई सत्कर्म उदय होता है तो जीवन में अच्छे आदमी का साथ मिलता है, और जब पाप कर्म उदय होता है तो जीवन में किसी बुरे आदमी का साथ मिल जाता है। अच्छे आदमी का साथ मिलने से जो पुण्य आप नहीं करना चाहते वो पुण्य भी आप कर बैठते हैं, और बुरे आदमी का साथ मिलने से जो पाप आप नहीं करना चाहते वो पाप भी आप कर बैठते हैं। आपको बात बताऊं एक थोड़ी सी, महाभारत में जब अर्जुन का और कर्ण का युद्ध होता है तो रात को कर्ण को नींद नहीं आती, मृत्यु से डरता नहीं था वो, और हार वो निश्चित समझता था, और उस समय हार का मतलब होता था मरना और जीत का मतलब होता था जीना, न दैन्यम न पलायनम, युद्ध छोड़ के भाग नहीं सकते थे, उसको पक्का पता था। लेकिन रात को बैठ करके वो उसको नींद नहीं आती, और सपने में उसको क्या आते हैं मालूम है आपको, जब सभा में द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था और कौरवों ने उसके लिए अपशब्द का प्रयोग किया था, किसके लिए, द्रौपदी के लिए, तो दुर्योधन के साथ कर्ण ने भी द्रौपदी के लिए कुछ ऐसा शब्द बोल दिया जो कभी बोल नहीं सकता। तो कभी जब आप बुरी संगत में बैठते हो तो जिस पाप के बारे में आप सोचते नहीं हो वो पाप आप कर बैठते हो, और जब कभी अच्छी संगति में बैठते हो तो कभी ऐसा पुण्य कर बैठते हो जिस पुण्य के बारे में आपने कभी सोचा नहीं। संगति का असर होता है, क्योंकि परीक्षित के सामने ये परिस्थिति क्यों खड़ी हो गई है। ऐसा कहते हैं कि जब पांडव स्वर्गारोहण के लिए जा रहे थे तो भीम ने परीक्षित को बुलाया, उसने कहा इस आलमारी में जो मुकुट रखा हुआ है वो मुकुट कभी पहनना नहीं, कोई बोलते हैं वो मुकुट दुशासन का था, कोई बोलते हैं जरासंध का मुकुट था वो, लेकिन जब कोई पाप कर्म फल देता है तो हम बड़े लोगों की आज्ञा की अवज्ञा करते हैं, और उसने सोचा कि मना क्यों किया, जिस बात के लिए आदमी मना करता है ना उस तरफ आदमी की ज्यादा प्रवृत्ति होती है। उसने मुकुट खोला और देखा, इतना सुंदर मुकुट उसने कभी देखा ही नहीं था, जरासंध कोई छोटा मोटा आदमी तो नहीं रहा, और उसने वो मुकुट धारण किया और किसमें दर्पण में जाकर के अपना मुंह देखा। शास्त्रों में ऐसा लिखा है कि रूप जो है वो स्वसंभोग्य नहीं होता, आप अपने पे ही मोहित नहीं हो सकते, संघात जो है वो दूसरे के लिए होता है, आत्मसम्मोहन हो गया उसको, और आदमी अपने बनाए हुए जाल में स्वयं फंस जाता है, और कहते हैं उसमें आके कलयुग का वास हो गया। मैं कर्म की विलक्षणता की बात कर रहा हूं, कौन सा ऐसा कर्म रहा होगा कि परीक्षित उस गद्दी पे बैठ गया जिस गद्दी पे महाराज युधिष्ठिर जो धर्म के प्रतीक हैं वो बैठे, और कौन सा ऐसा कर्म रहा होगा जिस कर्म के कारण एक ऋषि के गले में उन्होंने सांप डाल दिया। जब सिर पे जरासंध सवार हो तो ऋषि के गले में सांप ही डालोगे, और युधिष्ठिर यदि सवार हो बुद्धि में तो ऋषि के चरणों में सिर रखोगे, और जरासंध सवार हो तो यही बस, ज्यादा और कोई फर्क नहीं पड़ता उससे, मिल गया श्राप। ये सब कुछ होने के बाद भी, एक श्राप मिलने के बाद जब मुकुट उतारा उसने, तो उसने अपनी गलती स्वीकार करी और उसका प्रायश्चित करता है वो। संस्कार उसके अंदर ये होते हैं, उस संस्कार को निवृत्त करने के लिए वो प्रयास करता है और सुखदेव जी महाराज की उसको प्राप्ति हो गई। सुखदेव जी महाराज ने उसको कहा कि हम आपको कथा क्यों सुनाएं भाई, तो उसने क्या उत्तर दिया था मालूम है आपको? कल ये बात आ गई थी। उसने कहा, एक तो भगवान का मेरे को परोक्ष ज्ञान है, अपरोक्ष ज्ञान करने के लिए परोक्ष ज्ञान होना बहुत। तो बोले परोक्ष ज्ञान क्या है तेरे को? बोले परोक्ष ज्ञान मेरे को ये है कि परमात्मा ही अमृत है और परमात्मा ही मृत्यु है। तो कैसे अमृत है कैसे मृत्यु है? तो जीवन रूप से वह परमात्मा अमृत है और काल रूप से वह परमात्मा मृत्यु है। तो जीवन रूप से अंदर है और काल रूप से बाहर है। जब उसने इतना कहा तब सुखदेव जी महाराज ने कहा, और क्या विशेषता है? तो उसने कहा, मेरी विशेषता यह है कि मेरे में श्रद्धा है और आपकी विशेषता यह है कि आप सर्वज्ञ हैं। हाँ, ये बता दिया। तो वक्ता जो है वो सर्वज्ञ होना चाहिए, जिस विषय का वो वक्ता है उस विषय का उसको सर्वज्ञ का अर्थ ये नहीं है। अब कोई अर्थशास्त्र पे यदि प्रवचन दे, कोई राजनीति शास्त्र पे प्रवचन दे, तो वो नहीं है। सर्वज्ञ का अर्थ होता है कि जिस विषय पे वो बोल रहा है उस विषय का उसको सम्यक बोध होना चाहिए। तो आप कृष्ण के विषय में सम्यक आपको बोध है, इसलिए आप सर्वज्ञ हैं और मैं सुनने का अधिकारी इसलिए हूं क्योंकि मेरे अंदर श्रद्धा है। तब वो बताते हैं, देखो उन्होंने कहा, हे राजन, अभी आपकी बुद्धि व्यवस्थित हो गई। आपकी बुद्धि अव्यवस्थित चित्तानाम प्रसादो भी भयंकर। जो अव्यवस्थित व्यक्ति है उसकी प्रसन्नता भी किसी खतरे की घंटी है, और जो व्यवस्थित व्यक्ति है तो बुद्धि व्यवस्थित हो गई। सुखदेव जी महाराज ने परीक्षित को पहले ये बताया, सम्यक व्यवस्थिता बुद्धि। हे राजन, अभी तुम्हारी बुद्धि व्यवस्थित हो गई, और जो व्यवस्थित बुद्धि होती है वो परमात्मा को जानने में समर्थ होती है। इसलिए बोलते हैं वो, देखो आज का श्लोक सुन लीजिए। अभी 15 श्लोक कल हो गए थे, 16 नंबर का श्लोक है। वासुदेव कथा प्रश्न पुरुषान स्त्रीन पुनाति ही वक्तारं पृथकं श्रोत्रिन तत्पाद सलिलं यथा। भगवान की कथा, कथा की उन्होंने जो उपमा दे दी वो उपमा किससे दे दी? तत्पाद सलिलम यथा। तत्पाद सलिलम माने भगवती गंगा, तत्पाद सलील बोलते हैं गंगा के लिए। हाँ, गंगा जो है भगवान के पाद का जल है, इसलिए बड़े बड़े आचार्यों ने लिखा है, भगवती तव तीरे नीर मात्रा सनोहम विगत विषय तृष्णाम श्रीकृष्णम आराधयामी। ए भगवती, तेरे तीर पे। और ये तो आचार्य शंकर लिखते हैं, रावण भी कहता है कि हे भगवती, कब हमारे जीवन में वो दिन आएगा कि तेरे किनारे बैठने को मिलेगा। लेकिन अभी तो गंगा भी मैली हो गई, किनारे बैठने की भी इच्छा नहीं होती, अभी तो थोड़ी बहुत सफाई हो रही है, ऐसा है। तो इसलिए बता रहे हैं, वो जो भगवान का चरणोदक है, यत पाद सलिलम यथा वासुदेव कथा, तीन को पवित्र करती है। किसको सबसे बोलते हैं? वक्तारम, सबसे पहले वक्ता को पवित्र करती है। वक्तारम, क्योंकि वक्ता को पवित्र इसलिए करती है, वक्ता भी बहुत विचार विमर्श करके आता है, वक्ता को भी शास्त्र बहुत देखना पड़ता है, और बिना देखे बोले तो फिर मजा नहीं आता। फिर वक्तारम प्रक्षगम। और जो भगवान की कथा के बारे में प्रश्न करता है उसको भी पवित्र करती है। वक्तारं प्रक्षगम श्रोत्रिन स्त्रीन पुरुषान, यहां पहले स्त्री दिया बाद में पुरुष दिया। भगवान की कथा में कोई भेद नहीं है, चाहे स्त्री श्रवण करे चाहे पुरुष श्रवण करे, श्रोता होना चाहिए। श्रोत्रीन स्त्रीन पुरुषान पुनाति ही, स्त्री तीनों को पवित्र करती है, पुरुषान को स्त्री पुरुष दोनों को ले लिया वहां पे अध्याय रहे, सबको पवित्र करती है ये। अच्छा, कथा का बीज क्या है देखिए आप। भूमि दृप निर्प व्याज दैत्य अनेक सतायुत आक्रांता भूरि भारेण ब्रह्माणम शरणम ययो। कहते हैं भूमि दृप ऐसा है, दर्प दर्प और दृप्त, जब एक नासमझ व्यक्ति के सामने पास में अनंत ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है तो उसको दर्प हो जाता है। दर्प समझते हैं ना, दर्प एक दर्प शब्द का एक बड़ी सुंदर व्याख्या है, दृष्टांत दिया है कि कोई आदमी रेगिस्तान की यात्रा पे जा रहा था, तो जो रेगिस्तान में रहता है उस व्यक्ति से उसने पूछा कि रेगिस्तान की यात्रा करने में क्या करना चाहिए। उसने कहा धूप बहुत पड़ती है तो आप ऐसा करना, अपने साथ में पानी लेके जाना। वो पानी लेके गया, 3-4 किलो बेचारा जितना ले जा सकता है पानी लेके गया। लेकिन जब वो रेगिस्तान में पहुंचा, तेजो वारी मृदाम यथा विनिमयो, और उस वहां सूर्य की किरणें पड़ने लग गई तो पानी चमकता हुआ दिखने लग गया, तो उसको सबसे ज्यादा गुस्सा उस आदमी पे आया जिसने कहा 3-4 किलो पानी लेके जाना। उसने कहा कितना मूर्ख है, देखो तो इतना सुंदर पानी है ये, गंगा जी का पानी तो मैला भी हो जाता है लेकिन मरुमरीचिका में चमकने वाला जो पानी है वो मैला भी नहीं होता, इतना स्वच्छ दिखाई देता है। उसको इतना गुस्सा आया, उसने पहले घड़ा पटका और 4 गाली उसको दी। किसको? 4 गाली उसको दी उसने। आप थोड़ा विचार करो इसका अर्थ क्या हुआ। जो है उसको त्याग दिया जो नहीं है उसके लिए, जो सुख सुखाभास है उस सुख के लिए जो नहीं है जो है उसको छोड़ देते हैं। वही कह रहे हैं जब इस प्रकार के राजा हो गए बहुत, उन राजाओं से पृथ्वी आक्रांत हो गई। मालूम है आपको जब पृथ्वी पे शंकराचार्य के चरण पड़ते हैं, बुद्ध के चरण पड़ते हैं, कृष्ण के चरण पड़ते हैं तो पृथ्वी भी खुश हो जाती है। कहते हैं भागवत में कृष्ण जन्म की बात आती है, जब कृष्ण को लेकर के गए वसुदेव जी महाराज तो गंगा के अंदर जमुना के अंदर उफान आ गया, कृष्ण के चरणों को छूना चाहती है। वो उफान तब शांत हुआ जब चरण का स्पर्श हो गया। इसी प्रकार से जो कामी क्रोधी व्यक्ति होते हैं, लोभी व्यक्ति होते हैं, उनका उफान शांत तब होता है जब वो ऐश्वर्य को पा लेते हैं, लेकिन उनके अंदर जो तृष्णा होती है ना, तृष्णा, उनका उफान, तृष्णा का अर्थ मालूम होगा आपको, प्राप्तेषु अतृप्ति तृष्णा। तृष्णा का अर्थ ही यह है कि जब तक नहीं मिला है आपको तब तक आपको उसमें सुख दिखाई देता है, जैसे ही मिल गया तो वहां दुखी दुख है, क्योंकि तृष्णा का गणित ही यह है कि जो प्राप्त हो गया उसमें सुख नहीं है। सारा गणित तृष्णा का इतना है। तो ऐसे ही उन दर्प जिन व्यक्तियों के अंदर होता है वो जो है उसका त्याग कर देते हैं, जो नहीं है उसके लिए। तो ऐसे राजाओं से भूमि द्रुप निरप व्याज दैत्य मैंने राक्षस आक्रांता, ये पृथ्वी आक्रांत हो गई। महाराज ये पृथ्वी आपको सब कुछ देती है। इस पृथ्वी का संस्कृत में एक नाम है क्षमा, क्षमा धरा धरणी, अमरकोशकार ने लिखा है। ये सब कुछ हम लोगों को जो कुछ मिलता है वो कहां से मिलता है? ये पृथ्वी। इस पृथ्वी पर जब किसी मीरा के पांव पड़ते हैं इसको बड़ी खुशी होती है। भागवत में लिखा है जब पृथ्वी को भगवान की सेवा करने का मौका मिला तो पृथ्वी ने अपने अंदर का सारा सौंदर्य भगवान के सामने प्रकट कर दिया। क्योंकि कभी कभी ये सृष्टियों के जीव की सेवा करते करते ऊबती नहीं है, लेकिन कभी कभी जिसकी जिसने ये सृष्टि बनाई है उसकी सेवा करने का मौका जब पृथ्वी को मिलता है तो पृथ्वी में प्रसन्नता होती है। वो राजाओं के भूरी भारेण भार से पृथ्वी आक्रांत हो गई, दुखी हो गई। और जब आदमी दुखी हो जाता है तो क्या करता है? फिर ब्रह्माणम शरणम ययो, इसमें कंस का नाम नहीं दिया है। बहुत सारे उस समय दुष्ट राजा, एक नहीं अनेक दुष्ट राजा थे, उनके भार से पृथ्वी आक्रांत जब हो जाती है, हम लोग अपने जीवन में जब असमर्थ हो जाते हैं तो ऊपर वाले को या तो गाली देते हैं और या तो अच्छा मिल गया तो सराहना करते हैं, बोलते हैं ऊपर वाले की कृपा है। और कभी कभी आदमी बोलता है मैंने क्या बिगाड़ा, कुछ बिगाड़ा नहीं फिर भी मेरा बिगड़ गया, ऐसा बोलता है। चलो तो पृथ्वी कैसी गई ब्रह्मा जी के पास में उसके लिए बता रहे हैं। गौ भूत्वा अश्रुमुखी खिन्ना क्रदंती करुणम विभो उपस्थिता अंतिकी तस्मै व्यसनम स्वम अबोचतः। एक प्रत्येक चीज के दो रूप होते हैं, एक मूर्त रूप है एक अमूर्त रूप है। हम लोग जो हैं, भगवान ने गीता में कहा देहिनो अस्मिन् यथा देहे कौमारम यौवनम जरा, जो देह है वो स्थूल रूप है और जो देही है वो सूक्ष्म रूप है। तो पृथ्वी का जो हम लोग देखते हैं ये पृथ्वी का एक स्थूल रूप है और जिसको सुख और दुख की अनुभूति होती है वो उसका सूक्ष्म रूप है। वो सूक्ष्म रूप उसमें से निकला बाहर, जैसे बोलते हैं ना, अब आप लोगों ने सुना कि जब आदमी मरता है तो मरते समय क्या होता है मालूम है आपको? ये पता तो लगेगा जरूर सबको, क्योंकि मरना सबको है। तो उस समय क्या होता है मालूम है? धनानि भूमौ पशवस्य गोष्ठ्याम नारी गृह द्वारी जना शमशाने देहश्चितायाम परलोक मार्गे कर्मानुगो गच्छति जीव एकः। बड़ा अलग से देखता है कौन कितना रोता है। कभी कभी कहीं ऐसा होता है आदमी मर गया, दो तीन भाई हैं झगड़ा करते हैं, तो जब मर गया तो उस समय कमरे में ताला लगा देते हैं, लाश लेके शमशान घाट में जाते हैं, फिर बाद में आकर के उसके ऊपर विचार करते हैं। धनानि भूमौ, जो इसने सब कुछ कमाया वो कभी दूर जाकर के बैठ करके देखता है, वो सूक्ष्म रूप आपका है। वो सूक्ष्म रूप उसने गाय का रूप धारण किया और वो किसके पास में पहुंच गई? ब्रह्मा जी के पास में गई, सब उस विधाता के पास में। लेकिन ब्रह्मसूत्र में एक बात आती है वैषम्य नैर्घृण्य प्रसंग कर्म सापेक्षत्वात्, सुनाए दोस्तों ब्रह्मसूत्र तो कई बार सुन चुके हैं आप लोग। विधाता बाप है सबका, वो कभी किसी की तकदीर में दुख नहीं लिखना चाहता, लेकिन दुनिया में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं जिसकी तकदीर में दुख न लिखा गया हो। ऐसा क्यों होगा? तो बड़ा सुंदर उत्तर दिया है वहां, कर्म सापेक्षत्वात् विधा, जैसे जज के हाथ बंधे हुए होते हैं, वो नहीं चाहता, वो दया करता है, क्योंकि अपराधी जब उसके सामने खड़ा होता है तो अपराधी का चेहरा ऐसा होता है कि इस पे दया की जाए, लेकिन अपराधी के चेहरे को देख करके वो फैसला नहीं लिखता। वो फैसला किस पे, किसको देख के लिखता है? उसके कर्म को देख के लिखता है। इसलिए कहते हैं वैषम्य निर्घृण्य प्रसंग कर्म सापेक्षत्वात्, क्योंकि विधाता के हाथ भी तुम्हारी तकदीर में दुख लिखने के लिए बंधे हुए हैं। विधाता भी पराधीन है, विधाता स्वतंत्र नहीं है, वो भी पराधीन है। चलो अब बता रहे हैं क्या गई, ब्रह्मा तद उपधार्यत स देवै तया स जगाम स त्रिनयनम तीरम क्षीर पयो निधि। ये भागवत जी में ये भगवान कृष्ण के जन्म के पहले का जो एक विलक्षण ही बात बताई वहां पे, जब वो ब्रह्मा जी के पास में गए तो ब्रह्मा जी देवताओं को और भगवान शंकर को साथ में लेकर के गए, देवता और त्रिनयन शब्द का अर्थ होता है शंकर, भगवान शंकर, तो देवता और भगवान शंकर को साथ में लेकर के गए, क्योंकि भगवान शंकर जो है ना वो विश्वास के प्रतीक हैं, विश्वास के प्रतीक हैं, परम ये विश्वास के प्रतीक हैं। कहां गए? क्षीरपयो निधि, क्षीर सागर के किनारे गए। अच्छा, अब यहां एक भागवत में आप लोगों ने कई बार बहुत ध्यान से सब प्रसंग सुने होंगे, लेकिन वो अंदर नहीं जाते जहां भगवान है, उधर नहीं जाते वो लोग, कहां बैठते हैं? तत्र गत्वा जगन्नाथम देवदेवं वृषाकपिम पुरुषम पुरुषोक्तेन उपतस्ते समाहितः। वहां गए वो, और वहां जाकर के ईश्वर की प्राप्ति का साधन भगवान भागवत जी ने बता दिया, तत्र गत्वा समाहितः, उस किनारे पर गए और सबसे पहले उन्होंने अपने चित्त को समाहित किया। इसलिए सुखदेव जी ने परीक्षित को भी यह कहा कि भगवान का बोध होने की आप में पूरी सामर्थ्य है, क्योंकि आपकी बुद्धि समाहित हो चुकी है, सम्यक व्यवस्थिता बुद्धि। राजन, हे राजन, तुम में मैं परमात्मा को प्राप्त करने की योग्यता देखता हूं, क्योंकि तुम्हारी बुद्धि समाहित हो गई है। ये सारा जो जगत है ना महाराज, ये सब बुद्धि का खेल है सब। आज चाहे आप चंद्रमा पे पहुंच गए हों, चाहे फोन पे बैठे बैठे एसएमएस करते हो, व्हाट्सएप देखते हो, ये सब किसका खेल है? एक व्यक्ति की बुद्धि का खेल है ये, और एक व्यक्ति की बुद्धि सबको पागल बना के रखी हुई है। देख लीजिए, बुद्धि का विस्तार, इस बुद्धि का समाहित होना बहुत जरूरी है। इसलिए बोलते हैं यहां पे, तत्र गत्वा जगन्नाथम देवदेव वृषाकपिम पुरुषम पुरुषोक्तेन उपतस्ते समाहितः। वहां पर जाकर के उन्होंने पुरुषोक्त का पाठ किया, सहस्र सी रेखा पुरुष, पुरुषोक्त का पाठ किया। और पुरुषोक्त का पाठ करने, कैसे पुरुषोक्त का पाठ किया? तो चित्त को समाहित होकर के पुरुषोक्त का पाठ किया। सबसे बड़ी बात तो यही है, भगवान शंकराचार्य ने जो मानस पूजा में लिखा है, आत्मा त्वं गिरिजा मति सहचरा प्राणा शरीरम गृहम, उस परमात्मा की आवाज कहीं बाहर से नहीं आती, उस परमात्मा की आवाज आपके अंदर से ही आती है, क्योंकि परमात्मा कहीं बाहर नहीं, परमात्मा आपके अंदर ही है। ये स्वयं परमात्मा ने अर्जुन को बताया, ईश्वर सर्वभूतानाम हृदय देशे अर्जुन तिष्ठति। तो जहां जो होगा वहीं से उसकी आवाज आएगी, जहां जो नहीं होगा वहां से उसकी आवाज कैसे आएगी। तो बता रहे हैं, क्या बताओ, देखो, गिरम समादौ गगने समीरताम निसम्य वेदास्त्रिदशानुवाच। जैसे ही ब्रह्मा जी वहां समुद्र के किनारे बैठे, उनको समाधि लग गई, समाधौ समाधि लगी। और ये सुन लिया होगा आपने कई बार, उनको जो आवाज सुनाई दी वो बाहर से आवाज नहीं सुनाई दी, वो आवाज अपने अंदर से ही सुनाई दी। समाधौ गगने, ये जो मेरे पास में टीका है उसने लिखा है, गगने शब्द का अर्थ किया उन्होंने चिदाकाश। बड़ी अच्छी पुस्तक है ये, बहुत पुरानी पुस्तक है, जन्मभूमि प्रेस से छपी हुई, एक एक पन्ने इसके फट गए हैं अभी, बहुत जीर्ण शीर्ण हो चुकी है। ब्रह्मा जी को समाधि लग गई, और समाधि में गगने का अर्थ किया चिराकाश। तो चिराकाश से समीरताम गिरम निशम्य स्पष्ट एक आवाज सुनाई दी, वेदा त्रिदशान हवाच। वेदा बोलते हैं ब्रह्मा जी के लिए, और फिर जो आवाज ब्रह्मा जी को सुनाई दी वो आवाज ब्रह्मा जी ने देवताओं और भगवान शंकर के सामने बताई, आवाज ब्रह्मा जी को ही सुनाई दी। ये ब्रह्मा जी को क्यों सुनाई देती है मालूम है? क्योंकि हिसाब किताब उसी को रखना पड़ता है, बताना उसी को जो हिसाब किताब रखे, सारा इस सृष्टि का हिसाब किताब उन्हीं को रखना पड़ता है, बराबर है। ऐसा महाराज कंप्यूटर है ये, कभी पहले ऐसा लगता था कि ये बात सही होगी कि नहीं, लेकिन आजकल सुपर कंप्यूटर आ गए तो आप कहीं से भी बैठे बैठे टिकट बुक करवा सकते हो, और आपने बुक करवा दी तो दूसरे को लगेगा वो, कैसी एक विलक्षण व्यवस्था है इस सृष्टि में, वही होता है जो पहले कभी हो चुका है, वो कभी नहीं होता जो कभी नहीं हुआ है। सृष्टि कुछ नहीं, ये रिपीट है, ये पुनरावृत्ति है, पुनरावृत्ति के सिवाय कुछ नहीं है। क्या बोलते हैं देखो, गाम पौरिषिम में श्रुणुत्वा अमरा पुनः विदीयताम आसु तथा एव माचिरम। कहते हैं उन्होंने कहा, अमराहा, अमरा बोलते हैं संस्कृत में, हे देवताओं, मैंने जो वाणी सुनी उसके अनुसार तुम इस जगत में पुनः आसु विदीयताम चिरम, जिस प्रकार मैंने आकाशवाणी सुनी उस आकाशवाणी के अनुसार आप इस जगत में व्यवस्था करो। कौन बोलता है? ब्रह्मा जी बोल रहे हैं, जिस प्रकार हमने आकाशवाणी सुनी उसके अनुसार आप व्यवस्था करो। तो जब ब्रह्मा जी ऐसा बोलते हैं तो यहां पे हमारे को ब्रह्मा जी की प्राधीनता दिखाई देती है। ब्रह्मा जी इसीलिए जो बताए ना वहां पे, कर्म सापेक्षत्वात्, विधाता जो लिखता है यदि वो लिखना भी चाहे आपकी तकदीर में सुख तो भी लिख नहीं सकता, क्योंकि उसके हाथ भी बंधे हुए। इसलिए बताया, देखो क्या ब्रह्मा जी बोलते हैं देवताओं से और भगवान शंकर से, बोलो क्या बोलते हैं। देखो, पुरा एव पुंसा अवधृत धरा ज्वरा भवत भी अंशय यदुसु उपजन्यताम सयावत उरव्याम भरम ईश्वरेश्वर स्वकाल शक्तिया छपयन चरित भूई। परमात्मा की एक काल शक्ति है, काल शक्ति, काल शक्ति, काल शक्ति किसको बोलते हैं मालूम है आपको? कभी आपने बथुआ का साग खाया? खाया? कैसा होता है वो? कड़वा होता है। हाँ, लेकिन उसको खेती में बोते नहीं है, अपने आप आता है। कब आता है वो? गेहूं के समय में आता है, आता है ना। अब आप समझो कि उसका बीज पका और खेती में गिर गया, उसके बाद बरसात होगी, ठंडी पड़ेगी, सब कुछ होगा, लेकिन वो बीज खेती में पड़े पड़े कभी खराब नहीं होता। बीज को कितना संभाल के रखना पड़ता है मालूम है आपको? गवर्नमेंट कितना संभाल के रखती है बीज, यदि थोड़ी हवा ववा लग गई तो बीज खराब हो जाते हैं। लेकिन वो बथुए का बीज जो है वो इतनी गर्मी, इतनी सर्दी, ये सब में खेती में पड़ा रहता है, और जब समय आता है तब वो अपने आप उसमें, इसका नाम है काल शक्ति। वो काल शक्ति उसको एकदम सुरक्षित, जब उसको विकसित होना है तब वो विकसित होता है। वो बोलते हैं हम लोगों की जिस पृथ्वी की विपता को लेकर के हम वहां गए तो हमारे को बोध कैसा हुआ? अंतर बता रहे हैं अपने में और विष्णु में, अंतर बता रहे हैं ब्रह्मा जी। हमारे को बोध तब हुआ जब पृथ्वी ने हमको बताया, लेकिन विष्णु भगवान को हमारे बताने से पहले बोध है। इसका नाम हो गया सर्वज्ञता। जीव की अल्पज्ञ, तुलसीदास ने यही लिखा है, स्वबस जीव परबस जीव स्वबस भगवंता। जीव जो है वो परबस है और परमात्मा स्वबस है। जीव अल्पज्ञ है और परमात्मा सर्वज्ञ। और ये जब विधाता कहता है तो बात ज्यादा समझ में आती है। हम लोग तो किसी को भी सर्वज्ञ बना दें, किसी को भी कितने गुणवान बना दें, लेकिन विधाता ऐसा नहीं करता। इसलिए बताएं धरा ज्वरा पुंसाम पूरा एव अवधृता। पूरा मैंने पहले, धरा का ज्वर, ज्वर मैंने तकलीफ कष्ट, इस पृथ्वी का कष्ट उस परमात्मा को पहले ही पता है, पहले ही पता है। स ईश्वरेश्वर, भागवत के अंदर जो प्रयोग किया गया है श्री कृष्ण के लिए, ईश्वरेश्वर, ईश्वरों का भी ईश्वर, ईश्वरेश्वर। स ईश्वरेश्वर वो क्या करेगा? स्वकाल सत्या, अपनी काल शक्ति के हिसाब से, काल शक्ति के द्वारा, उरभ्याम भरम छपयन, इस पृथ्वी का भार उतारेगा। और फिर सयावत भी चरेत, और उस भार को उतारने के लिए जब तक वो पृथ्वी में रहेंगे तब तक उनके सेवा के लिए अंशय यदुसु उपजन्यताम, तब तक आप यदुवंश में उनकी सेवा के लिए उपस्थित रहना और यदुवंश में जाकर के आप जन्म ले लो श्री कृष्ण की सेवा के लिए। पुण्य जो होता है ना, पुण्य, पुण्य से हमको ये शरीर प्राप्त हुआ, पुण्य का उपयोग हमारे ऊपर है। पुण्य के क्या उपयोग हैं? पुण्य के दो उपयोग हैं, एक भोग एक सेवा, है ना, भोग और एक, अरे दो आदमी हैं, दोनों हनुमान जी की बहुत पूजा करते हैं, बहुत पूजा, और दोनों ने हनुमान जी से कहा हम आपकी इतनी पूजा और इतनी सेवा कर रहे हैं, इसका एक फल है कि हमारी एक एक करोड़ की लॉटरी लग जाए। और दोनों खूब ठंडे पानी से नहाते हैं और भगवान को ये चढ़ाते हैं वो चढ़ाते हैं, भगवान ने दोनों की सुन ली और दोनों की लॉटरी लग गई। अब दोनों करोड़ों करोड़ रुपए दोनों को मिल गए, एक ने करोड़ रुपए को धंधे में लगा दिया, वो तो अरबपति बन गया और एक ने करोड़ रुपए को भोग में लगाने शुरू कर दिया, दारू पीना, ये करना, वो करना, भोग में लगाया। तो जिसने भोग में लगाया उसका का हटा दो आगे, वो क्या बन गया? रोडपति बन गया। और एक जो है वो अरबपति बन गया। अब देख लो, वो जो करोड़ रुपए की प्राप्ति हुई वो तो पुण्य से ही हुई, वो तो पुरुषार्थ से हुई, लेकिन पुरुषार्थ से जिस चीज की प्राप्ति हुई उसका उपयोग आपके ऊपर है। यदि उसका उपयोग भोग किया तो परमात्मा से दूरी हो गई, और यदि उसका उपयोग सेवा की तो परमात्मा के करीब, व्यक्ति देवताओं को भी परमात्मा के करीब आने का मौका तभी मिलता है जब जीवन में सेवा भाव होता है। अभी एक थोड़ी देर के लिए मान लो, बड़ी मुश्किल से आप 50-60 लोग बैठे हो यहां पे, एक विचार करो थोड़ा सा। ये समय यदि आप घर में रहते तो क्या करते, और यहां आए तो क्या कर रहे हैं? या तो पुण्य क्षय करते और यहां आए तो पुण्य प्राप्त कर रहे हैं। तो वस्तु मिली बराबर पुरुषार्थ से, जो भी मिला आपको उसके लिए आपका जबरदस्त पुरुषार्थ है, लेकिन पुरुषार्थ के द्वारा प्राप्त हुई जो वस्तु है उसका उपयोग आपके ऊपर है। और यदि आप भोग करोगे तो धीरे धीरे वहां से दूर होते चले जाओगे, और यदि उसका उपयोग सेवा भाव से करोगे तो धीरे धीरे परमात्मा के करीब आते चले जाओगे। इसलिए कह रहे हैं अंशय यदुसु उपजन्यताम, इसलिए आपको भगवान की सेवा का मौका मिलेगा, और भगवान की सेवा का मौका तब मिलेगा जब आप यदु वंश, यादवों के वंश में उत्पन्न हो और उसी वंश में भगवान होंगे। उसके लिए श्लोक बता रहे हैं, वसुदेव गृहे साक्षात भगवान पुरुष पर जनिष्यति तत्पुरियार्थम संभवन्तु सुरिस्त्रया। वसुदेव जी महाराज की पत्नी से साक्षात भगवान नारायण जो हैं वो उत्पन्न होंगे। बता दिया, ब्रह्मा जी ने बता दिया। ब्रह्मा जी का अर्थ ये होता है होने के पहले जिन्हें कुछ पता हो वो ब्रह्मा जी है, और होने के बाद जब पता लगता है उसका नाम जीव है। इसलिए उसमें और हमारे में, उनमें और हमारे में कुछ बहुत बड़ा भेद है। वो कितनी, उन्होंने भी इतना बड़ा जो पद प्राप्त किया और भगवान का इतना बड़ा जो बोध उनको है, वो भी जबरदस्त उन्होंने भगवान की सेवा की होगी, पूजा की होगी, तब जाकर के उनको ये वस्तु की प्राप्ति हुई। अच्छा, वासुदेव कला अनंत सहस्र वदन स्वराट अग्रतो भविता देवो हरे प्रिय चिकीर्षया। भगवान हरि की प्रिय की चिकीर्षा, ऐसा नहीं है हम लोग ही भगवान से प्रेम करते हैं, सेवा करने का मौका नहीं मिलता ठाकुर जी का। वहां तो शेषनाग जी तो हमेशा भगवान की सेवा में तत्पर रहते हैं, ऐसी सेवा तो कोई नहीं कर सकता। और नित्य भगवान की सेवा में रहने के बाद भी भगवान के यथार्थ स्वरूप का बोध उनको नहीं हो पाता, क्योंकि परमात्मा अप्रमेय है, और जो अप्रमेय होता है वो कभी किसी के ज्ञान का विषय नहीं बन सकता, सतत वहां रहते। इसलिए भगवान के पहले कौन पैदा होगा? शेषनाग बलराम जी के रूप में शेष राम पैदा होंगे। क्यों पैदा होंगे? तो भगवान की सेवा करने के लिए। अच्छा, और कौन पैदा होगा? विष्णुर्माया भगवती यया सम्मोहितम जगत आदिष्टा प्रवणांसेन कार्यार्थे संभविष्यति। और ये जो भगवती माया है ये उत्पन्न होगी, इस माया की व्याख्या आपके सामने कल करेंगे। इसी की सारी करामात जो है किसकी है, माया की है, इसकी व्याख्या कल होगी।